ओम शांति। सब ऐसे कैसे डिले हो रहे हैं सारे? ओम शांति। सभी ओके हैं, अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? पक्का? तो सभी दोनों ऊपर हाथ करके अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। हम बहुत अच्छे हैं। सभी खुश है? खुश है? सिर्फ खुश है? बहुत खुश है? बहुत खुश है। तो वो खुशी दिखनी चाहिए हमें चेहरे पे। बहुत सुंदर डायलॉग सेशन अभी हम सब ने सुना। और अब फिर से हम आते हैं थोड़ा आध्यात्मिक यात्रा की ओर, क्योंकि कहते हैं संसार में चाहे हम कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे बढ़ ले, कितनी भी चीजें मॉडिफाई हो जाए, कितनी भी फैसिलिटी बढ़ जाए, लेकिन एक जगह आकर हम रुकते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे पास उस चीज की कमी है। कौन सी चीज है वो? कौन सी चीज है वो? स्पिरिचुअलिटी। संसार में हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था, जीवन जीने के लिए हमें आध्यात्मिक होना जरूरी है, स्पिरिचुअल होना जरूरी है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे हम साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, नई नई चीजों का इन्वेंशन ही क्यों ना करते हो, लेकिन साइंटिस्ट भी नई चीजों का इन्वेंशन करने के लिए उनका बेस क्या है? स्पिरिचुअलिटी। जब तक वो साइलेंस में नहीं जाते तब तक कुछ न्यू क्रिएशन नहीं होती है। साइलेंस मीन शांति, और शांति मिलेगी कब? कब? सुना ना आपने दो दिन से, शांति कहाँ है? कोई है ऐसा मार्केट जहां जाकर हम शांति खरीद के ला सकते हैं, या किसी शॉपिंग मॉल में गए, किसी मंदिर मस्जिद में गए, वहां डेफिनेटली हमें शांति मिलती है, पर वो टेम्पररी नहीं रहती, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं रहती है। घर आते आते वो शांति की शक्ति हमारी क्या हो जाती है? हम बहुत सुकून ढूंढने के लिए मंदिर में जाते, पूजा अर्चना करते, बहुत शांति मिलती मन को, लेकिन घर आते आते क्या होता है सबका? क्या होता है जी? सेम पैटर्न में चले जाते हैं। तो ये कहां से खरीदेंगे हम? ये है एम्पावरमेंट की जरूरत। आज के टाइम में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत फास्ट हो गया जमाना। एक उंगली के टिक करने से सारी चीजें फॉरवर्ड हो जाती हैं, एक उंगली के टिक करने से सारी चीजें डिलीट हो जाती है, वो सिर्फ गैजेट्स में। यहां से आप कितना डिलीट करते हैं? कितना करते हैं? करता है यहां पर कोई डिलीट करता है? कोई भी चीज एक आई, आप फोन में स्क्रॉल कर रहे हो अपनी स्क्रीन गैलरी को, बहुत सारी अनवांटेड चीजें वहां दिखती है, या ऐसी चीजें दिखती है जिसे देखकर आपको बड़ा दुख होता है, अच्छा फीलिंग नहीं आती है, जो कोई काम की चीजें नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। यहां से 10 साल पुरानी बात भी, हमें कोई संबंध के साथ कुछ हुआ होगा, कोई इंसिडेंस, वो व्यक्ति अगर सामने आ जाएगा तो वो बात भी हमें याद आएगी। मैं एक सत्य बात बताती हूं आपको। एक माता जी एक सेंटर पर जाती थी। देखो हम बातों को कैसे पकड़ के रखते हैं। एक माता जी रेगुलर सेंटर पर जाती थी, रेगुलर ज्ञान योग का क्लास करती थी, रेगुलर परमात्मा को याद करती थी, मेडिटेशन करती थी, फिट थी बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। किसी के साथ कुछ एक थोड़ी बात हो गई ऊपर नीचे। जब जब वो व्यक्ति सामने आता था उनको बड़ा दुख होता था। एक बार माउंट आबू आए, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम था, माउंट आबू आए तो जिनके साथ कुछ अनबन हुई थी वो भी माउंट आबू आए थे उसी प्रोग्राम में। अब यहाँ तो वातावरण इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है कि यहाँ तो ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो माता जी के कंटिन्यू सुबह शाम सीने में दर्द रहने लग गया। ऊपर हमारे हॉस्पिटल में पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे सीने में दर्द होता है। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, ईसीजी करते हैं हम। सारे रिपोर्ट्स किए, नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने फिर हिस्ट्री पूछा, आपको क्यों पेन हो रहा है, आपका बीपी इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? तो कहती, ऐसे मुझे बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ हिस्ट्री पूछा तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, वो फलानी आत्मा के साथ, मैंने फलाने व्यक्ति के साथ मेरा कुछ अनबन हो गया था ना, जब जब वो सामने आता है तब तब मुझे पेन होता है और तब तब मेरा बीपी हाई होता है। गैजेट्स से चीजें डिलीट करना हमने बहुत आसान समझ लिया, लेकिन मन से चीजें हमारी जाती हैं क्या? नहीं जाती, चाह कर भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कमी है एम्पावरमेंट की, कमी है स्पिरिचुअलिटी की। मैं ये नहीं कहती कि हम नहीं, हम स्पिरिचुअल हैं। हर एक व्यक्ति एक स्पिरिचुअल पाथवे बनाकर चल रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का वो रास्ता कहाँ पहुंच रहा है? क्या वो राइट रास्ता है? क्या हम जो कर रहे हैं आजकल, हमारी पूजा भी, मैंने कई बिजनेसमैन को देखा है, पूजा भी कैसे करते हैं हम? शॉप में जाने का टाइम हो गया, ऑफिस में जाने का टाइम हो गया, स्थूल शरीर तो पूजा कर रहा है, मन कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? कस्टमर तो निकल नहीं जाएंगे, टाइम तो नहीं हो जाएगा, एम्प्लॉयज टाइम से पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं? हम शरीर से सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कितना तेज भाग रहा है। अभी अभी आप में से कोई बता सकता है कि अभी एक मिनट पहले आपके मन में क्या थॉट आया था? बता सकते कोई? कोई नहीं बता सकता। ध्यान? अच्छा, ध्यान ही नहीं। तो हमें भाइयों बहुत जरूरत है अपने आप को एम्पावर करने की, अपने आप को सशक्त करने की। तो ये बहुत सुंदर विषय है आज हमारे बीच में, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आज के हमारे मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे भ्राता श्री आदरणीय गंगाधर भाई जी, जो कि ओम शांति मीडिया के एडिटर हैं, आपको आमंत्रित करते हैं कि आप मंच पर आए, अपना आसन ग्रहण करें। भ्राता शिवा शरणप्पा वाली जी, आप भी आए मंच पर, अपना आसन ग्रहण करें। भ्राता राकेश गौतम जी, सभी हम तालियों से सभी मेहमानों का अभिवादन करेंगे। डॉक्टर सविता दीदी जी, डॉक्टर विवेक गौतम जी, आप सभी आए मंच पे, अपना आसन ग्रहण करके मंच की शोभा बढ़ाए। डॉक्टर श्री गोपाल नारसन भाई जी, सिस्टर बीके गीता बहन जी, आदरणीय भ्राता जी मोहन सिंगल जी, तालियां बजनी चाहिए जोर से। आइए इस सुंदर कार्यक्रम को हम शुरू करने से पहले फिर से पुनः एक बार परमात्मा का आवाहन करते हैं, उनके स्मृति में बैठते हैं। सभी अपने मन को शांत करके, अपने हाथ में जो भी चीजें हैं वो साइड में रख के दो मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं।
है रे जा, है मान, इधर जा, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। है माँ किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर ठहर जा, है माँ रहे हो वो मंजिल जिधर जा रहे हो। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए, ठहर जा, ठहर जा, ठहर मानो। को जो भरमा रहा है, भरमा रहा।
कार्यक्रम की शुरुआत हम हमारे सभी अतिथियों के स्वागत से करते हैं। बहनों से मैं अनुरोध करूंगी सभी मंचासीन अतिथियों का बैच, बुके और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें और हम सभी तालियों से उनका स्वागत करें। हमारी भारतीय संस्कृति अति सुंदर संस्कृति, सनातन संस्कृति, जहां हम अतिथि देवो भव की इस थीम को लेकर चलते हैं और उसी एक परंपरा के चलते एक स्वागत का हमारा एक परंपरा है, बहुत ही सुंदर परंपरा है। आप सभी मेहमानों के साथ आप सबका भी स्वागत हो रहा है, आप ऐसे इमेजिन करें, सभी तालियां बजाते रहें। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे आदरणीय भ्राता गंगाधर भाई जी को मैं निमंत्रण करना चाहूंगी। भाई जी का परिचय आप सभी मीडिया कर्मियों को पता ही है। भाई जी ओम शांति मीडिया के एडिटर है, जो शांतिवन में प्रिंट होता है वो पेपर, और भाई जी को उनके आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। इसलिए भाई जी से मैं निवेदन करूंगी, भ्राता जी आप आए और अपने मन के भाव हम सबके बीच रखें।
ओम शांति। बहुत सुंदर समय है। अभी अगर हम देखें इस समय सबको क्या क्या हो रहा होगा संसार में, रोज होता है। मंदिरों में, गिरजाघरों में, सब जगह प्रार्थना और घंटियां बज रही होंगी। तो ऐसे सुंदर समय की बेला में हम सभी,
सॉरी भाई जी पर एक जरूरी अनाउंसमेंट है हम सबके बीच में। हमारे माननीय सांसद जी भागीरथ चौधरी जी, जो कि आप अजमेर से हैं, पधारे हैं, आप सब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। सभी एक बार फिर से उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
तो आज के मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, मंत्री महोदय जी, और आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही हमारे वरिष्ठ भ्राता मोहन सिंगल जी, डॉक्टर सविता दीदी, गीता बेन, योगिनी बेन और वाली जी, और डॉक्टर नारसन जी, बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है क्योंकि सब फील्ड में आज बहुत ही सुंदर, तीन दिन से हम यहाँ जो सुन रहे हैं उसके संबंध में हमारा जो प्रोफेशन है उसके अंदर हम मेडिटेशन का कैसे उपयोग और प्रयोग कर सके और अपनी जीवन को कैसा सुंदर बना सके और एक तनाव मुक्त रहते हुए हमारा जो कार्य है उसको कर सके। मनुष्य के साथ मीडिया, मेडिटेशन और माइंड, ये तीनों की राशि एक ही है। पिछले सत्र में मैं सुन रहा था कि एआई वाली बात आई, बहुत सुंदर विचार निकले। जहां हम जब मन की शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं वहां एकाग्रता की जरूरत होती है। आज हम हमारे मन को इतना स्कैटर्ड कर दिया है, लीकेज कर दिया है, मन की जो शक्ति इतनी ड्रेनेज हो रही है, हर पल ड्रेनेज हो रही है, और उसके कारण हम जब शांति से बैठना चाहते हैं तब भी हमारा मन मेरा मन मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहता, ये सबकी दुविधा है। तो ऐसे में हमारे प्रोफेशन में अगर हम उसका उपयोग करना चाहते हैं तो हमें यहां, मैं इसके पूर्व ये संस्था से जब नहीं जुड़ा था तो मैं गीता पाठी था, गीता का अध्ययन करता था और घर घर में प्रचार प्रसार करता था। अब मैं ये अनुभव मेरा यहां आने का बताता हूं। हम बहुत कॉलेज लाइफ थी और मैं सब जगह जाता था और समाज में हमारे परिवार में हमारा नाम बहुत अच्छा था। हम तीन चार भाई थे, पढ़ाई भी करते थे। लेकिन अब यहां आने का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट ये आया, हम व्यवसायी बैकग्राउंड से है तो व्यवसाय था हमारा, तो बुधवार बुधवार को जब फैक्ट्री में छुट्टी रहती थी तो हम प्रचार प्रसार के लिए हर घर में जाते थे। माइंड हमारा क्यों काम नहीं करता है इसका बहुत ही मेरा निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। होता क्या था कि हम ऐसे जगह जाते थे जहां कुछ अट्रैक्शन हो, उस घर को चॉइस करते थे, वहां गीता का पाठन करते। हूबहू कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, मुख में राम और अंदर में कुछ और। हमारी जो अंदर की कामनाएं हैं वो उसमें, लेकिन दुनिया की नजर में बहुत अच्छे थे। और ऐसे दौर में हम चलते थे। फिर मैं एक बार जा रहा था तो एक छोटा सा केंद्र था ब्रह्मा कुमारी का, वहां से गुजर रहा था, बाहर में कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है और वो एक पिक्चर लगा हुआ था और बस ये निमा शाम का ही समय था। सब लोग अंदर योग करके मुरली सुनते हैं हमारे यहां। अब मुरली से तो आप परिचित हो गए कि मुरली यहां किसको कहते हैं, तो सुन के लाल लाइट में योग कर रहे थे। बहुत अच्छे वातावरण था, 25-30 भाई बहने थे अंदर और स्टेज पर एक भाई कंडक्ट कर रहा था जो गीता पाठशाला का। तो उसमें क्या हुआ, मैं भी पीछे जाके बैठ गया। मैं उस आशय से गया कि भाई यहां भी कोई हाथ रेखा वगैरह देखते होंगे और मैं वहां पीछे बैठ गया, मैं भी दिखा दूंगा। फिर थोड़ी देर में व्हाइट लाइट हो गई, व्हाइट लाइट होते सब लोग जाने लगे, लेकिन चेहरे सबके इतने खुशनुमा थे और वातावरण में इतना सुंदर था। तो मैं भी जाने लगा तो जो कंडक्ट कर रहा था वो भाई, उसने मुझे बुलाया कि भाई इधर आओ। तो फिर उसने मुझे बोला कि आप कहां से आए, जैसे पूछते हैं। फिर वो उसमें प्रदर्शनी के चित्र, ये जो बेसिक जो ब्रह्मा कुमारी की किताब है पथ प्रदर्शन, तो उसका चित्र लगा हुआ था, पहले आत्मा का, परमात्मा का, सर्वात्मा का। ऐसे जब एक चित्र था गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक, तो हम गीता पाठी थे तो वहां मुझे लेके गया। वो भाई मुझे समझाने लगा कि गीता में जो वर्णित युद्ध है ना, वैसी हिंसा भगवान नहीं सिखाता। और हमने तो ये पढ़ा था अक्षुणी सेना वगैरह, मार धार सारी चीजें, लेकिन मुझे ये बात वो समझ में आई, वो पकड़ में आई। वो कहते हिंसा ये है अंदर की वृत्तियों का युद्ध जो चल रहा है, वो वृत्तियों से हम जो हिंसा करते उसको चेंज करना, ये युद्ध है, मनोयुद्ध है। और मनोयुद्ध ये बात जैसे पकड़ में आई तो मैं बोला मैं तो इतने साल से ये कर रहा हूं तो मुझे तो कुछ सारा वेस्ट गया, चलो एनी हाउ। फिर मैं इसमें चलने लगा तो पहले तो हमें बहुत अच्छे लगते थे। अभी हमें ये बात है कि भाई ये तो मुख में राम बगल में छुरी जैसा काम हो रहा है, हमारे पल पल हो रहा है। तो ये चेंज करने के लिए मैं इस इंस्टीट्यूशन में आया और वो टर्निंग पॉइंट आया। और फिर उसी को धारणा में चलने लगे तो सारे समाज, माँ बाप, परिवार सब विरोध हो गए। कल तक ठीक थे लेकिन इसमें आने के बाद जब धारणा, जब मैं खुद को देखने लगा, वो एक शेयर है ना, ऐसे चल रहे तो ठीक है, जब खुद को देखने लगा सारा जमाना हमारा विरोधी हो गया। तो कहने का भाव यह है कि माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है हमारी जिंदगी को संवारने के लिए। अगर हम इन टू आउट चलने की पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं तो कोई समस्या या मुश्किल आते वैसी नहीं लगती है जैसी हमें अभी लगती है, क्योंकि माइंड, एक बार मैं कोट करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी एनसीसी कैडेट को मिल रहे थे तो उनको पूछा कि आप कितने बजे उठते हो, कैंडिडेट को पूछा तो कितने बजे उठते, तो किसने बोला 5 बजे, कितने बोला 6 बजे, कितने बोला ये, तो एक ने, वो कैंडिडेट ने खड़ा होकर कहा सर आप कितने बजे उठते हो, तो बोले मैं 4 बजे उठता हूं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आप में से कौन 4 बजे उठता है, तो उसका इंपोर्टेंस प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि सुबह 4 बजे उठने के फायदे क्या है, कि मैं मेरे निजी काम करने के बाद मैं इतना सारा कर देता हूं जो दिन में मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे ही माइंड को संवारने के लिए एक ही इंस्टीट्यूशन है इस वर्ल्ड में जहां रेगुलर माइंड को सशक्त करने के लिए सुबह 4 बजे उठने की यहां प्रथा है। और 4 बजे ऐसा वातावरण है, आप कहीं भी संस्था में जाओ, मठ मस्जिद जो भी आप देखते हो, रेगुलरिटी नहीं है, यहां एक दिन भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि माइंड को जब सारा ट्रैफिक सोया हुआ है, मन का ट्रैफिक, और हम शांति से याद करने के लिए वो वातावरण हमें सपोर्ट करता है। और हम, और मेडिकल साइंस में भी वो है, एक मेडिकल साइंस की स्टडी में आया सुबह जो 4 से 5 बजे जो उठते हैं वो उनका शरीर स्वस्थ रहता है, वो बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें 90% बढ़ जाती है। उसमें आपने सब सुना भी होगा कि जब सुबह 4 बजे उठते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, जो जीवन सुरक्षा प्रणाली को बहुत सुदृढ़ करती है, और बाह्य वातावरण है उससे हम बच सकते हैं। तो सुबह जो 4 उठने का, एक तो शरीर भी स्वस्थ, मन भी तरोताजा, फिर दूसरा यहां का सबसे बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है कि सत्संग, रोज नई चैलेंजेस है तो रोज हमें नया चाहिए, मन को रोज नया चाहिए, तो यहां जिसको हम परमात्मा का महावाक्य कहते हैं उससे हम रिफ्रेश होते हैं। और मेडिटेशन हमें हमारी शक्तियों को एक एकाग्रता में ले आता है और हमें पता चलता है कि मेरे पास क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी में क्या एबिलिटीज है, ये सब आधा घंटा बैठने के बाद हमें पता चलता है। और कुछ नहीं करते मेडिटेशन में, हम हमारा मन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया और उसके पोटेंशियल को यथार्थ समझने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन मेडरी से बना हुआ शब्द है, इटालियन वर्ड है वो। मेडरी का अगर हिंदी अनुवाद करें तो हिंदी है पुनः स्वस्थ होना, और इंग्लिश में कहते हैं टू हील योरसेल्फ, माना खुद हम बिखर गए हैं, जो तंग आ गए, तनाव में है, कोई भी हमारी शक्तियां, मन हमारा भटक रहा है, थोड़ा बेचैन है, तो उनको पुनः ओरिजिनल स्टेट में ले आना, तो हमें हील करना है। तो हील करने की प्रक्रिया सिवाय, और यहां आधार सबसे बड़ी बात यह कहीं नहीं है, यहां ट्रुथ सत्यता का बेस है, और जगह मानव का या सुना हुआ यह सब, यहां डायरेक्ट परमात्मा ने यह विधि बताई। तो मेरा यह कहना यह है कि हमारे प्रोफेशन में अगर हम शार्पनेस लाना चाहते हैं तो मेडिटेशन मस्ट। मैंने ये अनुभव किया है, मुझे कब लिखना होता है तो मैं सुबह उस दिशा में बढ़ता हूं और 15-20 मिनट में मैं लिख लेता हूं। तो कहने का भाव ये है, वो जैसे आज एआई की बात हो रही थी तो वो सारा गूगल से जहां सारी दुनिया से इकट्ठा करके वो टॉपिक तक ले आता है। अगर हम ये अपनी शक्ति को अगर हमने ट्रेन किया है तो ऑटोमेटिक वो ले आता है। तो कहने का भाव ये है कि आज के प्रोफेशन में अगर हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मेडिटेशन और मीडिया का समन्वय और संतुलन बनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि यहां से आप जाएंगे, मेडिटेशन तो आपने सीखा ही है, आप उसको अंग हिस्सा बनाएं। अब मैं छोटी सी बात करके आवाज पूरा करता हूं। हमारी दादी जी हमेशा कहती थी किसी को भी बोलो ना टाइम नहीं है। तो दादी जी बहुत सरल शब्दों में सहज कहती थी, गुलजार दादी हमारे कहते थे आपको पानी पीने का तो टाइम है ना, पानी पीते हो फिर खाना खाते हो। तो बाबा के साथ मेडिटेशन को लाइफ से अलग नहीं करना, जैसे पानी आया हाथ में जो इनपुट जा रहा है उसको पवित्र वाइब्रेशन के द्वारा अंदर डालो, 5 सेकंड उसमें पवित्रता का वाइब्रेशन भर के फिर अंदर डालो, वो आपका दवाई का काम करेंगे। तो कहने का भाव यह है कि आप सभी यहां आए हो और विपरीत माहौल में आए हो, जबकि आज की ब्रेकिंग न्यूज की समय चल रहा है, जरूर आप में ये जिज्ञासा है। तो मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूं कि ऐसे समय में भी आप आए हो, ये दर्शाता है कि आप स्पिरिचुअल में कितना रुचि रखते हो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राताश्री आपका, आपकी बातें बहुत मन को छू लेने वाली लेकिन सत्य बातें थी। हम सबको अच्छी लगी, सबको समझ आया कि हमारे मन को कितनी जरूरत है स्पिरिचुअल होने की, आध्यात्मिक होने की, लेकिन उसके लिए अंतर यात्रा में जाने की भी बहुत आवश्यकता है, एकाग्र होने की या जागृत अवस्था में रहने की भी एक आवश्यकता है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति, उसे संसार से वैराग आ गया और उसने निश्चय किया कि गांव के बाहर एक आश्रम बना है सन्यासियों का, वहां पर एक जाने माने सन्यासी है, वो सभी युवाओं को शिक्षाएं देते हैं, आध्यात्मिक जगत की यात्रा में बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने निश्चय किया, अपने परिवार वालों को बोला तो परिवार से बहुत अच्छी रीति से बहुत प्यार से छुट्टी दी कि देखो आज के दौर में कौन संन्यास लेना चाहता है, हमारे बच्चे ने डिसाइड किया है समाज कल्याण के लिए तो हम खुशी खुशी आपको छुट्टी देते हैं। तो वो माता पिता जाकर उस बच्चे को वहां पर छोड़ के आए, कॉलेज स्टूडेंट था मतलब, उसको छोड़ के आए आश्रम में। उनके जैसे ही बहुत सारे नौजवान वहां बच्चे शिक्षा ले रहे थे महात्मा जी से। तो महात्मा जी ने, महात्मा जी को कहने के लिए जब वो मिलने के लिए गए, कहा कि ये बच्चा भी आपके आश्रम में रहेगा, आपसे शिक्षा लेगा, आपके गुरुकुल में रहेगा। तो महात्मा जी ने सिर्फ इशारा किया हां जी का, क्योंकि उनका मौन चल रहा था। तो अब इसमें पूछने वाली बात ये, मौन चल रहा है अब हमारे लिए आगे के क्या डायरेक्शन, माता पिता तो छोड़ के चले गए, अब बच्चा नया था। तो बच्चे ने पूछा महात्मा जी से कि आप नहीं बात कर सकते, मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप मुझे इस कागज पेन में लिख के दीजिए। तो महात्मा जी ने हां जी के डायरेक्शन में सर हिलाया। तो बच्चे ने पूछा आपका जब तक मौन रहेगा तब तक मेरे लिए आगे क्या आज्ञा है, मुझे किन बातों पर ध्यान देना है। तो उन्होंने एक वर्ड लिखा, जागृति। अब ये जागृति वर्ड पढ़ के बच्चा बड़ा कंफ्यूज हुआ कि जागृति क्या है, उसको लगा कोई चीज है, कोई वस्तु है, किसी का नाम है। पूरे आश्रम में पूछ के आया, ढूंढ के आया, कहीं जागृति नहीं मिली। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, समझ में नहीं आया। फिर से बच्चा महात्मा जी के पास गया, उन्होंने पूछा महात्मा जी मुझे नहीं समझ आ रहा कि जागृति क्या है, मुझे आगे के लिए, अगले हफ्ते के लिए कोई डायरेक्शन दीजिए। महात्मा जी ने फिर एक कागज में एक वर्ड लिखा, कौन सा लिखा होगा, जागृति। अगेन जागृति। बच्चा फिर कंफ्यूज, एक हफ्ता बीत गया, समझ ही नहीं आ रहा जागृति क्या है। तीसरा हफ्ता आया और तीसरे हफ्ते में दो चार दिन बाद मौन व्रत खुलने वाला था। बच्चा फिर गया कि महात्मा जी अब ये हफ्ता, दो हफ्ते भी बीत गए जागृति के साथ, अब तीसरे हफ्ते के लिए क्या डायरेक्शन है। तो महात्मा जी ने एक सेंटेंस लिखा, जागृति प्लस जागृति इज इक्वल टू जागृति, मतलब अवेयरनेस अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। आज अगर हमें अपने आप को एम्पावर करना है तो हमारे हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, सुन सकेंगे हम यहां से, क्या जरूरी है? अवेयरनेस, जागृति। तभी हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, तभी हम अपने मन को सशक्त कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुमारी राधे को आमंत्रण करूंगी, बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति हम सबके बीच में देंगी। कुमारी राधे, हम सभी कर्तव्य ध्वनि से कुमारी राधे का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे।
आज राधा को शाम याद आ गया।
बहुत बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति कुमारी राधे भाई जी से बुके ले लीजिएगा। हम फिर से कुमारी का बहुत करतल ध्वनि से अभिवादन करेंगे। सभी ने एंजॉय किया नृत्य, फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अभी मैं नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता शिवा शरण अप्पा वली जी को। आप उत्तर कर्नाटका कन्नड़ा डेली प्रेस के बिदर से आए हैं, वहां के चीफ एडिटर है भ्राता शरण अप्पा वली जी।
वंदे मातरम, ओम शांति। मंच पर विराजमान सभी पवित्र आत्माएं और पवित्र आत्माओं का प्रचार करने पधारे हुए सारे पत्रिका बांधा, आज का ये विषय तो गहन है, समय बहुत कम है। शांतनु भाई ने हमको खाना तो परोसा है, पेट भर के खाओ लेकिन ज्यादा मंगो मत। विषय तो गहन भी है, लिमिट 5 मिनट का, ठीक है, फिर इसमें भी समय नहीं जाना चाहिए। मीडिया पेशेवरों को सशक्त बना सकता है क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मीडिया वाले पेशेवर बोले हैं, हर पेशे में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या पत्रकर्ता हो, पत्रिका कर्मी हो, उनको सशक्त मीडिया बना सकता है क्या, बहुत बड़ा प्रश्न है और जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से कोई किसी को सशक्त नहीं बनाता, अपने आप को बनना पड़ता है। शिवाय परमात्मा के सशक्त बनाने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। सशक्त बनाने का नाटक करते हैं, राजकीय लोग लोगों को सशक्त बनाने का करते हैं, महिला एम्पावर का करते हैं, युवकों को शक्ति प्रदान करने का करते हैं, सब नाटक है, ये कोई नहीं करते, मदद करते हैं। सशक्त बनाने वाला शिवाय परमात्मा के इस धरती पर कोई नहीं। मीडिया, मेडिटेशन, अभी भाइयों ने बताया, ये सभी पावरफुल हैं। कब? मीडिया पावरफुल है, सशक्त है, लेकिन कब सशक्त है? जबकि पॉजिटिव विचार उसके मन में आ जाए, सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी समझने की, परख करने की उस एडिटर में आ जाए। आजकल एडिटर ऑडिटर बनने जा रहे हैं, एडिटर एडिटर नहीं रहे हैं, ऑडिटर बन रहे हैं। पहले एडिटर बनना है तो परमात्मा से हमें ये विचार लेना पड़ेगा, बाबा मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं एडिटर बनूं। समाज को सशक्त तो मैं नहीं बना सकता, अगर तू वो पावर मुझे कलम में दिया तो मैं वो संदेश समाज तक पहुंचा दूंगा और समाज को सशक्त बनाऊंगा। इस तरह के जो है हमको करना है, लेकिन शक्ति सशक्त, सिर्फ सशक्त बनने से कुछ नहीं चलेगा। रावण भी बहुत सशक्त थे, राम से भी सशक्त थे, राम से भी ज्यादा शक्ति थी, राम से ज्यादा वेद पढ़े थे, लेकिन दुर्भावना थी, दुष्ट शक्ति थी, राम में पवित्र शक्ति थी, पुरुषोत्तम बने। इसी तरह सशक्त बनना है, सिर्फ सशक्त बनना नहीं है, दुष्ट भी सशक्त रहते हैं, सज्जन से भी अगर सशक्त कोई रहता है तो दुर्जन रहता है, उनसे भी सशक्त रहता है, लेकिन उससे विपरीत होती है। पहलवान ताकत चाहिए, जिसको मदद करता है उसको जो है पहलवान कहते हैं, अगर नहीं है, किसी को अपराध करता है तो गुंडा कहते हैं, दोनों में भी ताकत है। सशक्त किस तरह बनाना उसका विचार करना है। भाइयों, आपको एक ही एक मैं विनती करता हूं, क्योंकि समय नहीं है ज्यादा बोलने के लिए और पेपर वालों को बोलने की आदत ज्यादा होती है, लेकिन समय नहीं रहने से मैं एक बात कहता हूं, हम बड़े सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, माइक्रो इससे भी हम ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। क्यों ये कहता हूं, आज दुनिया में समाज को सुधारने वाले उनकी कमी नहीं है, धर्मात्माओं की कमी नहीं है, मठों की कमी नहीं है, प्रचार करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आज एक ऐसी संस्था हमारे धरती पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ये किसी जाति पाति को नहीं देखते। अब दूसरे देखते हैं क्या ऐसा बोलेंगे आप, लेकिन मैं स्पष्ट एक पत्रकार के नाते कहता हूं, कभी मठों में जा लिंगायतों का लगता है, कभी रायरगुड़ियों में जा ब्राह्मणों का लगता है, गुरुद्वारे में जा सिखों का लगता है, मस्जिद में जा मुसलमानों का लगता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है यहां पर आने के बाद कौन किस जाति के हैं नहीं, ये सिर्फ मानव जाति के हैं, शिव परमात्मा के आत्माएं हैं, ये स्पष्ट नजर आता है। इस संदेश को आप अगर देंगे तो सारे पेशेवरों को आप सशक्त बना सकते हैं। आपके आप कुछ करना नहीं है, बजट निकालना नहीं है, सरकार से कुछ मांगना नहीं है, आपके पेपर में फ्रंट पेज पर लो प्रतिदिन एक वाक्य लिखते जाइए, बस वो सुबह का जो वाक्य लिखते जाइए प्रचार के लिए। अगर इतना करेंगे तो सशक्त आप भी बनेंगे, पहले आप बनिए उसके बाद लोगों को बनाने का कोशिश कीजिए। पत्रिका के द्वारा सिर्फ आप न्यूज के साथ साथ बाबा का एक वाक्य डेली दो ही एक थोड़ी सी एक सेंटीमीटर में क्यों नहीं होता उतना लिखते जाइए, आप दुनिया को सशक्त बना सकते हैं, आप भी सशक्त बनते हैं। समय दिए हैं, समय खत्म हुआ, फिर उनकी घंटी आने से पहले मैं अपना स्थान छोड़ता हूं। क्यों ये बात बोल रहा हूं, एक बार ऐसे ही भाषण करते रहे, सामने से एक आदमी डंडा लेकर आया तो ये घबर गए भाषण देने वाले, बोले बाबा मैं भाषण बंद करता हूं। उसने बोला नहीं आप भाषण चालू करो, फिर क्यों आए हैं, आपको बुलाया कौन, उनको देख रहा हूं, इस तरह उनको देखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद
भ्राता जी के लिए, आप एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। बात एम्पावरमेंट की चल रही है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आप स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण है, आपके शरीर की एज 94 इयर्स ओल्ड है, एक बार तालियां बजाएं। थैंक यू भ्राता जी, थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करूंगी भ्राता राकेश गौतम जी, आप हरियाणा सोनीपत से DIPRO से आए हुए हैं, भ्राता राकेश गौतम जी।
आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी अतिथिगण, देश के कोने कोने से आए सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, ओम शांति। आज पिछले दो दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सत्रों के जरिए विभिन्न विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, तो मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिला। इसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी को साधुवाद देता हूं कि मुझे आज इस इतने बड़े मंच से यहां आप सभी के साथ रूबरू होने का अवसर मिला। और मुझे जो आज का विषय दिया गया है कि वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है। वैश्विक तौर पर अगर मैं बात करूं मीडिया की शांति और भूमिका की, तो कुछ विषय मुझे आज याद आते हैं। मैं लंबे समय से पत्रकारिता में रहा और फिर उसके बाद PR जो पत्रकारिता का ही एक रूप है उससे जुड़ा और पत्रकारों के साथ रहा। आप देखिए कि आज पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याओं से जूझ रही है, कहीं युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, कहीं दूसरी समस्याएं हैं। पिछले दिनों हमने कोविड जैसी समस्या से अपने आप को उबार करके यहां तक लेके आए हैं। तो हम देखिए कि उस पूरे परिदृश्य में मीडिया की सकारात्मक भूमिका कैसे हो सकती है, मीडिया कैसे हम सभी को एक शांति के रास्ते पर लेकर के जा सकता है, जो ब्रह्म कुमारी जी के राजयोग का भी मूल मंत्र है और जिसको हम पिछले तीन दिनों से लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारा जो अफगानिस्तान, सीरिया और दक्षिण सूडान जैसे क्षेत्रों में, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपसे बात करूंगा, बाकी मेरे से बड़े वक्ता सभी लोग बैठे हैं। तो वहां पे जब सब लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे युद्ध के क्षेत्र की, तो BBC मीडिया एक्शन के तौर पे एक कैंपेन वहां पर शुरू किया गया और उस कैंपेन का एकमात्र उद्देश्य था कि वहां पे जो भी नेगेटिविटी हो जो भी युद्ध में नुकसान हो उस सब के बीच में शांति और संवाद स्थापित करना, और बड़ा अच्छा उसका वैश्विक तौर पर जो है सफलता रही है। उसके बाद अगला जो क्षेत्र आया इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध का, उसमें द पीस फैक्ट्री करके एक अभियान चलाया गया, मेक पीस वायरल करके अभियान में इजराइल और अरब देश के युवाओं को जोड़ने का सभी के काम किया गया। तो उसमें आप देखिए कि किस तरीके से मीडिया ने वैश्विक तौर पर शांति और सद्भावना को अपनाने का काम किया। वहां पे सब लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे दूसरे विषयों पे, लेकिन इन सभी विषयों के जरिए लोगों को जोड़ने का, शांति की तरफ भेजने का काम किया गया। उसके बाद आप भारत की बात करें, भारत में आप देखें कि ऑल इंडिया रेडियो सांस्कृतिक एकता और संवाद का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ऑल इंडिया रेडियो उसने पूरे देश में जो विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है वहां पर किस तरीके से काम किया, और आज भी ऑल इंडिया रेडियो हमारे विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धार्मिक त्योहारों, सामाजिक सुधारों, राष्ट्रीय एकता के जो कार्यक्रम हैं उनसे बड़े अच्छे तरीके से ऑल इंडिया रेडियो ने हमें जोड़ा है। देखिए, हम सभी लोग रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं, विभिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, लेकिन उसके बीच में पिछले कुछ दिनों से हमने कहा कि अपराध जगत की नेगेटिव खबरें और वो दूसरी खबरें लोग ऊब चुके थे उनसे, तो फिर उनसे एक जन्म हुआ कि मैं एक हरियाणा, पंजाब, जो भी इस एरिया है, मध्य प्रदेश निकलने वाले दैनिक भास्कर अखबार से, उसमें एक स्टोरी आती थी नो नेगेटिव न्यूज, नो नेगेटिव न्यूज करके, बड़ा अच्छा उसको लोगों ने सराहा। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि लोग ऊब चुके हैं और शांति और सद्भावना की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शांत माहौल चाहिए पूरे क्षेत्र में। तो नो नेगेटिव न्यूज आई, फिर उसके बाद उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उन्होंने एक नो नेगेटिव मंडे करके कि मंडे के दिन हम कोई भी नेगेटिव न्यूज उसके अंदर नहीं लेकर के आएंगे। तो वो मीडिया की एक महती भूमिका जो वैश्विक शांति और सद्भाव की दिशा में एक बड़ा कदम था। उसके बाद आज तक जैसे बड़े जो चैनल रहे हैं, आज तक जैसे बड़े चैनलों ने गुड न्यूज करके एक चैनल एस्टेब्लिश किया, उसमें कहा कि हम दूसरे चैनलों पे क्राइम, अपराध, दूसरी चीजें दिखाते रहते हैं, लेकिन हम गुड न्यूज करके एक चैनल लेके आएंगे तो उसपे अच्छी अच्छी खबरें सारा दिन दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि उसकी टीआरपी कुछ ही दिनों में बाकी चैनलों से काफी आगे निकल गई। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि मीडिया के क्षेत्र में भी जब हम कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। मैं कोविड काल की अगर बात करूं, कोविड काल में जब मीडिया के संसाधन सब बंद हो गए थे, लोग जा नहीं पा रहे थे, रिपोर्टिंग हो नहीं रही थी, तो क्या हुआ? तो वहां पे लोगों के सामने आया नया सोशल मीडिया का ट्रेंड। खुद हम लोगों ने जब ये देखा कि सूचनाएं लोगों के बीच में जा नहीं रही हैं, और जो सूचनाएं जा रही हैं कि वहां फला जगह 10 आदमी मर गए, फला शमशान घाट में जगह नहीं बची है, उस जगह पे ये काम हो रहा है, तो सब लोग एक पूरी तरह से अंधकार में सब लोग डूब गए थे। तो उसके बीच में मीडिया ने ही एक काम करने का कोशिश की कि लोगों की पॉजिटिव स्टोरियां वहां पे क्रिएट की, पॉजिटिव स्टोरियों में बताया कि लोग किस तरीके से दिल्ली के शमशान घाट में लोगों के अंतिम संस्कार के लिए काम कर रहे हैं। एक आदमी है जिसने अपनी BMW जैसी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी को उसमें एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। कोई आदमी जा रहा है कि एक आदमी गया, उसने 50 कैंपर सुबह पानी के रखे और लोगों के लिए वहां पे सारा दिन पानी पिलाने का काम किया। उसने कहा कि कोविड जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन कोविड जैसी चीज है अगर है और उसमें लोग चारों तरफ से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो उसमें हम किस तरीके से आम आदमी की, मानवता की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में हमारे बीच में रही। नेपाल में जब आपदा आई तो कई बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने वहां पे लोगों की मदद करने के लिए कैंपेन चलाया पूरे वैश्विक स्तर पर। तो इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में हुई, पूरे विश्व में हुई, और मेरा सभी मीडिया के जो बंधु आए हैं पूरे देश से, तो मेरा उनसे सभी से अनुरोध है कि हम अपने दैनिक रूटीन से हट करके कुछ काम आम लोगों के लिए करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। आप सभी का आज मुझे यहाँ मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू भ्राता राकेश गौतम जी। आज भी संसार में ऐसे कई न्यूज़पेपर, कई न्यूज़ चैनल है जो एक भी एडवर्टाइजमेंट या एक भी नेगेटिव न्यूज टेलीकास्ट नहीं करते हैं। उसमें ब्रह्मा कुमारीज के ही हमारे दो चैनल है, पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारीज चैनल। साथ साथ आप सभी को पता ही होगा एम्पावरमेंट के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, इसलिए दैनिक भास्कर ने भी ये एडिशन लिया है, एक संकल्प लिया है कि हर सोमवार को, हर मंडे को नो नेगेटिव न्यूज उस न्यूज़पेपर में होगी। तो मैं चाहूंगी सभी हमारे भाइयों बंधुओं से कि आप सब भी यहां से एक संकल्प लेकर जाइए कि हम भी हमारे लाइफ में रोज ना सही, हफ्ते में एक दिन सही, ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा फॉरवर्ड करेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? आप सभी साक्षी हैं इस बात के। मंत्री जी, आप देख सकते हैं आध्यात्मिकता का जीवन में कितना प्रभाव होता है। आप सभी अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं आपके सकारात्मकता की ओर कदम उठाने के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर आदरणीय सविता दीदी जी को। आप महिला विंग प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं शांतिवन से। आदरणीय सविता दीदी जी, आप हमारे बीच अपने मन के भाव रखें।
ओम शांति। आप सभी भी एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे ओम शांति। जगत नियंता, सबके सुख के दाता, परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान मंचल सीन, हमारे सभी माननीय वक्तागण और सभा में उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए आप सभी मीडिया कर्मी, मीडिया समाज को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण क्षमता रखता है और जो लहर मीडिया फैलाना चाहता है समाज में वो फैला सकता है, तो इसीलिए उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है। तो जैसे कि आज का हमारा विषय है सशक्तिकरण, कि मीडिया प्रोफेशनल्स का सशक्तिकरण किया जाए, तो ये दो लेवल पर होगा। एक तो सेल्फ एम्पावरमेंट हो, फिर प्रोफेशनल एम्पावरमेंट, फिर जिसका प्रभाव सोशल एम्पावरमेंट होगा। तो अगर हम प्रोफेशनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सारे कन्वेंशनल मेथड्स तो हम यूज करते रहते हैं अपने प्रोफेशनल एम्पावरमेंट के लिए, कि हम इस प्रोफेशन में हैं तो हमारी स्किल्स क्या होनी चाहिए, एबिलिटीज क्या होनी चाहिए, और उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना या अपने कौशल का विकास करना, जिससे कि जो भी नए नए अपडेट्स होते रहते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से आज परिवर्तन होते रहते हैं, तो उन परिवर्तनों के साथ हम एडेप्ट कर पाएं, समय के साथ हम चल पाएं। और फिर जो मीडिया है उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी रहे। जैसे आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, तो ये खास ये दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। तो प्रेस को जितना या मीडिया को जितना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी उतना ही वो अपना कार्य कुशलता से कर पाएगा। और हमारे जो आचार संहिता है, मूल्य हैं, उन मूल्यों पर यदि हम दृढ़ रहते हैं तो वो विश्वसनीयता देता है, यानी एक निष्ठा और विश्वसनीयता बनी रहती है। और हम जहां प्रोफेशनल फील्ड्स में हैं वहां सहयोग का वातावरण होना चाहिए, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं, क्योंकि जहां सहयोग है वहां अधिक सफलता होती है। और नेटवर्किंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, और तनाव के वातावरण में काम करते हैं मीडिया कर्मी तो फिर तनाव प्रबंधन की कला भी हमें आनी चाहिए, और जिसके लिए ही हम सुन रहे हैं दो दिन से कि जितना हम स्पिरिचुअल होंगे, जितना हम योग का अभ्यास करेंगे, उतना ही हम अपने स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर पाएंगे। और जब हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए हमें वो आत्मबल चाहिए होता है, मनोबल चाहिए होता है, और वो सेल्फ एम्पावरमेंट के वातावरण में अभी हम यहाँ हैं। आप यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे सेल्फ को ही एम्पावर करने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गुण, ऐसी कुछ स्पेशलिटीज हम अपने जीवन में अपनाकर चलते हैं तो हमारे सेल्फ एम्पावरमेंट होता रहता है। एक तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए ना, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा है तो हम नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और जो भी मीडिया कर्मी हैं, क्योंकि उनको बहुत रचनात्मक रहना होता है, तभी हम जो भी समाचार हैं उसे उस ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। और चाहे टेलीविजन में है, मना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है, उसमें तो कोई भी एक ही तरह से आप हमेशा चीज को नहीं दे सकते हैं, उसमें बदलाव लाना होता है। और हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं कि चीजों को दोनों नजरिए से देखा जा सकता है, वो पॉजिटिव भी होते हैं और उसका दूसरा पहलू नेगेटिव भी होता है। लेकिन जैसे खबरों के लिए कहते हैं कि सबसे बुरी खबर मीडिया की सबसे अच्छी खबर होती है, लेकिन जैसे अभी हमारे सामने गौतम जी कह रहे थे कि अच्छी खबर भी हमारे लिए सबसे अच्छी खबर हो, यानी उनको भी हम हेडलाइंस में स्थान दें। तो ऐसा नहीं है कि लोगों का टेस्ट केवल नेगेटिव ही होता है, लेकिन क्या हम उन्हें दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि हम उनकी रुचि किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो पॉजिटिव रहना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कि क्योंकि हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। मीडिया के क्षेत्र में हम हैं तो कोई लक्ष्य लेकर के हम कार्य कर रहे हैं और वो हमारा लक्ष्य है। ये तो समाचार देना है, लेकिन उसके साथ प्रमोट हमें क्या करना है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमें अपने में एक्साइटमेंट और पैशन को बनाए रखना है ना, वो एक लगन जो हमारी होती है, वो लगन सदा बनी रहे तो हमारे कार्य में हमें बोरियत महसूस नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का गुण हो हमारे अंदर, क्योंकि कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है तो यदि हम झुक जाते हैं तो वो संघर्ष बढ़ता नहीं है, वहीं समाप्त हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो समय परिस्थिति को देख करके यदि हमें कहीं झुकना होता है, थोड़ा नम्रता से व्यवहार करना है जिससे कि समस्या खत्म हो जाए, तो वो हम कर पाए। और हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हो अपनी वैल्यूज के प्रति, कि हम कभी भी अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज ना करें। समाज की बदलती परिस्थितियों में आज ऐसा हो रहा है। और कॉन्फिडेंस हो, निश्चय हो, अपने आप पर निश्चय हो, परमात्मा में निश्चय हो, और ये विश्वास हमें सफलता की ओर सहज ले जाता है। और हम जो भी अपना कार्य करें वो दिल से करें, केवल ड्यूटी समझ करके नहीं। जो काम हम प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, उसके परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। तो हम कई बार सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते है ना, लेकिन सिचुएशंस के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो हमारी थिंकिंग है, उसको हम जरूर चेंज कर सकते हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट थे, वो अपना बीते साल का ब्योरा लिख रहे थे। तो लिखा उन्होंने कि मेरा बीता साल बहुत बुरा रहा, और क्या क्या बुरा हुआ, तो मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ा और मैं बहुत दिन बिस्तर में रहा। फिर लिखा मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक साल उसके कारण खराब हो गया क्योंकि वो परीक्षा नहीं दे पाया। फिर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और चौथा मैं रिटायर हो गया। उनकी पत्नी वो उसी समय पहुंची और उसने देखा कि वो क्या लिख रहे हैं। तो जब उसने ये पढ़ा तो उसने कहा मैं भी कुछ लिखूं, तो उन्होंने कहा भले। तो उसने फिर दूसरे पेज पर लिखा कि बीते साल हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा रही, और उन्हीं बातों को उसने लिखा कि मेरे पति का ऑपरेशन हुआ, बहुत समय से वो दर्द में थे लेकिन अब हमेशा के लिए उन्हें दर्द से मुक्ति मिल गई, कुछ समय जरूर उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, एक साल खराब हो गया, लेकिन मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज भी हमारा बेटा हमारे साथ है। उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तीसरा कि मेरे ससुर की मृत्यु हुई 90 साल की उम्र में, बिना किसी लंबी बीमारी के सहज मृत्यु हुई उनकी, तो जाना तो सभी को ही है। फिर चौथा उसने कहा मेरे पति रिटायर हो गए हैं, बहुत समय से वो एक पुस्तक लिखना चाहते थे लेकिन व्यस्त रहते थे, उनको समय नहीं मिलता था तो वो पुस्तक नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन अब उनको पर्याप्त समय मिलेगा और वो अपना पुस्तक लिख पाएंगे। तो घटना वही है लेकिन नजरिया या उसको सोचने का तरीका हमारा जो है उसके प्रति हमारा भाव बदल देता है कि वो उनको बहुत बुरा लग रहा है और वही उसके लिए उस भगवान की कृपा उसे महसूस हो रही है। तो ये परिवर्तन की क्षमता हमारे अंदर है और जब हम आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राज्यों का अभ्यास करते हैं तो हम ये सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, यानी आत्मचिंतन करते हैं, हम आत्ममंथन करते हैं, हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो हम अपने आप को समझ पाते हैं कि कहाँ हम कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं या मेरी क्या कमी है या मेरी सोच किस दिशा में जा रही है। क्योंकि नॉर्मली हम अपने माइंड को ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हमारी परिस्थितियां हमारे मन को चलाती हैं वैसे ही हमारा मन चलता रहता है। लेकिन योग हमें एक चांस देता है कि हम अपने मन को देख पाएं, हम अपने मन को दिशा भी दे पाएं, सही दिशा में उसे जहां ले जाना है। तो अगर मुझे समझ में आता है कि मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम इरिटेट हो जाते हैं, या मुझे कॉम्पिटिशन में जलसी हो जाती है किसी से, या मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, कोई भी इस तरह की अपनी कमियां हमें नजर आने लगती है। नॉर्मली हम बाह्यमुखी होते हैं, दूसरों की कमियां ज्यादा देखते हैं, दूसरों के दोष हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक उंगली हम दूसरे की ओर करते हैं तो तीन उंगली हमारी ओर आ जाती है। तो दूसरों की कमी से पहले हमारे अंदर जो कमियां हैं जिसको हम स्व परिवर्तन लाना कहते हैं कि उन कमियों को हम दूर करें। तो लेकिन वो सेल्फ रियलाइजेशन से स्टार्ट होता है कि दूसरा हमें कहेगा आपके अंदर ये है तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे ही हम स्वयं उसे स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं सॉल्व हो जाती है। और योग अभ्यास से हमें वो शक्ति मिलती है, भले समय लग सकता है हमें कि जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी उन्नति में बाधा बन रही हैं, लेकिन अवश्य हम उसे दूर कर पाते हैं, उस कमी पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। और योग अभ्यास में हम ईश्वर के साथ संबंध का अनुभव करते हैं। परमात्मा शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, तो उस संबंध से हमें ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें उसमें कार्य करना या उसका सामना करना मुश्किल नहीं लगता। और इसलिए हम देखते हैं कि जो भी महापुरुष हुए संसार में, उनके इस बल ने, मनोबल ने ही उन्हें महानता के स्तर पर पहुंचाया। चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो ईसा मसीह थे, चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, और वर्तमान में भी हम देखते हैं ऐसी कई हस्तियां हैं। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए और कभी उस समय उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि वो कभी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगे और देश और विश्व को वो इतना प्रभावित करेंगे। तो मनोबल और जो अध्यात्म से जुड़ा होता है उसके अंदर ये सहज मनोबल होता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं वो उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाती हैं। तो यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालते हैं तो हमें, क्योंकि जैसे वातावरण में आज के समय में कार्य करते हैं, तो वो योग हमें मन की शांति भी देता है, मन की शक्ति भी प्रदान करता है, हमें तनाव मुक्त रखता है। जैसे बताया कि मेडिटेशन माना क्या, हीलिंग ऑफ माइंड, यानी जो हमारे मन को स्वस्थ बनाता है। तो फिर हम अपनी उन शक्तियों पर कायम रह पाते हैं और जैसा हम समाज को देना चाहते हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं समाज के प्रति और जो परिवर्तन हम समाज में भी लाना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होता है। तो मैं आप सभी जो भी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके प्रति मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि जरूर यहां से हम सेल्फ एम्पावरमेंट के इस मंत्र को लेकर के जाएं और प्रतिदिन हम अपने आप को, भले हम बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ समय, और जैसे कहा कि प्रातःकाल का समय तो हमारा अपना ही होता है, तो हम वो पॉजिटिव चिंतन, जो सकारात्मक चिंतन हमें ज्ञान देता है, उसके लिए और योग अभ्यास के लिए कुछ समय अवश्य दें। ओम शांति।
थैंक यू दीदी जी आपका। एम्पावरमेंट के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, वास्तविकता में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ एक स्थान की, जहाँ डॉक्टर दंपति नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते थे और नियमित रूप से सेंटर पर क्लासेस करने आते थे, प्रभु को याद करते थे, अपने आप को मेडिटेशन से रिचार्ज करते थे। एक बार उनके साथ ऐसा कुछ घटना हुई, एक ट्रेजेडी हुई। उनका 12 साल का बच्चा, उसके एग्जाम्स थे बोर्ड के और शाम को उनको किसी फैमिली फंक्शन में जाना था। बहुत बड़ा घर था उनका और उन्होंने अपने घर के पास से लगकर एक कमरा परमात्मा का बनाया था मेडिटेशन के लिए। वहां पर वो रोज सुबह शाम मेडिटेशन करते थे। ऐसा हुआ कि वो गए, बच्चे के एग्जाम थे तो बच्चे को घर पर ही छोड़कर गए और कहा कि तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत होगी तो तुम हमें फोन कर देना, बाकी अगर जब नींद आ जाए, भोजन बना के रखा है, भोजन खाकर तुम सो जाना, हम फंक्शन अटेंड करके आ जाएंगे। वो तो निश्चिंत होकर फंक्शन के लिए चले गए। बच्चा घर में था, पढ़ते पढ़ते उसको कब नींद आ गई पता नहीं चला। कहीं शॉक सर्किट हुआ किसी बिजली कनेक्शन का और पूरे घर में आग लग गई। आग इस कदर लगी, इस कदर बढ़ी कि उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। जाते जाते वो डॉक्टर दंपत्ति पड़ोसी को कह के गई थी कि हमारा बच्चा अंदर है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे ही आग की लपटें उठने लग गई, पड़ोसियों का ध्यान गया और तुरंत ये भी ध्यान आया, ये भी स्मृति में आया कि बच्चा घर में है 12 साल का, उसको हमें बचाना होगा, उसको हमें आवाज देनी होगी। लेकिन बच्चा पढ़ पढ़ के इतना थक गया था कि वो बहुत गहरी नींद में था। घर में आग लगी है, बाहर से पड़ोसी आवाज दे रहे, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से पड़ोसी कांच का दरवाजा खिड़की का तोड़ के अंदर घुसे और उसको जगाकर बचाकर बाहर लेकर आए और फिर फोन किया उस डॉक्टर दंपत्ति को, ऐसे ऐसे ट्रेजेडी हो गई है आपके घर में, आग इतनी फास्ट चारों ओर फैल गई है कि हम चाह कर भी कुछ भी बचा नहीं पाए, बच्चे को बस सेफली बाहर लेकर आए। जरा सोचिए, हम सब उस जगह होते तो हमारा रिएक्शन क्या होता, हमारा रिएक्शन क्या होता, क्या होता? टेंशन आती, घर जल गया, कुछ भी नहीं बचा। डॉक्टर थे और उनकी वाइफ टीचिंग फैकल्टी में थी, एजुकेशन फील्ड में थी, काफी सारा डेटा उनका वहां था, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बचा तो सिर्फ मेडिटेशन रूम बचा। दूसरे दिन नियमित रूप से वो सुबह 7 बजे सेंटर पर क्लास करने पहुंचे। हम में से कोई अगर होता ऐसा तो शायद ही पहुंच पाता। क्लास करने पहुंचे, सेंटर की दीदी को किसी के थ्रू पता चला था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये इनके साथ नहीं हुआ, अगर इनके साथ हुआ होता तो वो क्लास में नहीं आते। उस दिन गुरुवार था। परमात्मा को भोग स्वीकार करने के बाद जब वो दंपत्ति दीदी से भोग लेने आए तो उन्होंने दीदी से कहा कि दीदी कल रात को ऐसे ऐसे ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ। तो दीदी ने कहा, सच में आप सत्य कह रहे हैं या आप कोई मजाक कर रहे हैं? कहते नहीं, हम सत्य कह रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है, आज भी वो दंपत्ति है, आज भी नियमित रूप से सेंटर पर जाती है, क्लास करती है, जहां पर 99% उनका घर जल गया था, वहां पर वो इतने खुश, माना इतने स्टेबल माइंड, इतने एम्पावर अपने आप में लग रहे थे। कह रहे थे, घर जल गया तो क्या हुआ, हमारे परमात्मा का कमरा तो सेफ था, परमात्मा का कमरा तो सेफ था, उसने हमें अपने इस ट्रेजेडी को बचाने के लिए, उसने हमें उस कमरे को बनाने की प्रेरणा दी। और आज अगर उसका कमरा नहीं होता प्रभु का घर में तो हम कहाँ रहते? बाकी घर तो कभी भी बन सकता है। एम्पावरमेंट की जीती जागती निशानी, इसके लिए भाइयों, हमें सच में बहुत सकारात्मक रहने की आवश्यकता है, सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो देंगे, हम जो परोसेंगे, सारा समाज उसी को खाएगा, उसी को ग्रहण करेगा। इसलिए अपने आप को पहले एम्पावर करो तो हमारा ये जो प्रोफेशन है मीडिया का, वो अपने आप एम्पावर हो जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे डॉक्टर भ्राता विवेक गौतम जी को। आप दिल्ली से पधारे हैं, आप लिटररी एडिटर जनभावना मैगजीन के हैं भ्राता विवेक गौतम जी।
ओम शांति। मैं अपनी बात, क्योंकि समय 7 मिनट का है, आपके समक्ष रखूंगा। उससे पहले मंच पर विराजमान सभी महान विभूतियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरी 4 पंक्तियां हैं जो बहुत कुछ संकेत करती हैं। मैंने अनेक मंचों से देश विदेश में उनको पढ़ा है और सराहना मिली है कि चरित्र नहीं जब शेष रहा तो देश कहां रह जाएगा। चरित्र नहीं जब शेष रहा तो देश कहां रह जाएगा। आत्मा जब हो जाएगी मैली, वेश कहां रह जाएगा। पर तुम जब चल दोगे उठकर तो क्या राहें और क्या मंजिल, सब बिछ जाएंगे कदमों में, कुछ शेष कहां रह जाएगा। सब बिछ जाएंगे कदमों में, कुछ शेष कहां रह जाएगा। आज का जो विषय है, मीडिया पेशेवरों को क्या सशक्त बना सकता है, कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे प्रशिक्षण हैं या कौन सी ऐसी सहायता है जो उन्हें मिले कि वे एक सक्षम, समर्थ और जैसा भी हमारे मुझसे पूर्व वक्ता कह रही थी कि सकारात्मकता, सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है और वो झलकती है रचनात्मकता में। अगर आप सकारात्मक हैं तो आपकी रचनात्मक शक्तियां आपको एक नए मुकाम तक ले जाती हैं, एक नई ऊंचाई तक ले जाती हैं। इस विषय को अगर मैं देखता हूं तो देखता हूं कि एक तो व्यक्तिगत स्तर पर जो मीडिया प्रोफेशनल या हैं या आने वाले हैं भविष्य में, वो क्या कर सकते हैं या जिन मीडिया समूहों में वो काम कर रहे हैं उन मीडिया समूहों की क्या भूमिका है उनको सशक्त बनाने में, और तीसरा बिंदु कि सरकार के स्तर पर मीडिया प्रोफेशनल को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मेरा नाम विवेक है, तो कभी कभी हम बात करते हैं जब बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं कि बुद्धि तो सभी में होती है और विवेक यानी जो भेद कर सकता है मेधा और प्रज्ञा। तो मैं देख रहा हूं हमारे सामने बहुत ही समर्थ लोग बैठे हैं, माननीय डॉक्टर प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जिन्हें मैं सुबह सुन रहा था सत्र में, वो अभी भी हमारे साथ हैं और बड़ा सौभाग्य है उनके समक्ष अपने विचार रखने का और इस मंच के समक्ष अपने विचार रखने का और तमाम देश भर से जो लोग आए हैं उनके सामने अपने विचार रखने का। चुनौती बहुत बड़ी है, जैसा कि संकेत भी हुआ है कि सशक्तिकरण आज के दौर में जब हर तरफ से धनबल, बाहुबल या राजनीतिक हस्तक्षेप, या पहले से भी ये चलता रहा है, उन स्थितियों में एक पत्रकार, एक मीडिया पर्सन, एक मीडिया प्रोफेशनल किस तरीके से अपनी अस्मिता, अपनी चेतना, अपनी आत्मा की आवाज को जिंदा रख सकता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनका अपना स्वयं का, अपने स्वयं से जो शपथ वो लेते हैं कि मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा, तो उनका स्वयं का चरित्र यानी उनकी कथनी और करनी मैं एक संवेद स्वर होना चाहिए, एक मिलीजुली बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बातें तो आदर्शों की करें कथनों में, लेकिन करनी कुछ और है, ऐसा ना हो जाए। तो सबसे पहले तो जो लोग आ रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि पारदर्शिता रखनी है काम में, व्यक्तित्व में, लेखन में, और जो वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं उसके बारे में। अभी दीदी ने बड़े अच्छी बात कही थी, पेशेवर वो होता है जिसके अंदर संपूर्ण कौशल का विकास हो चुका हो, और कुशल व्यक्ति को बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, क्योंकि उसके लिए एक तरह से उसमें ढल चुका होता है। तो कौशल का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो विकास होता है, मुझे लगता है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हमारे आदरणीय संजय जी पढ़ाते हैं, मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली में एक प्रोग्राम में वो हमारे यहां मुख्य अतिथि भी थे। अगर शिक्षक अच्छे हैं, ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं, चारित्रिक रूप से सबल हैं, तो निश्चित रूप से उनकी छवि, उनके लक्षण, उनका प्रभाव उनके शिष्यों में दिखेगा। और दूसरी बात और है कि इस रेट रेस में जो चूहा दौड़ आज पैसे के पीछे चल रही है, उस दौड़ में कैसे छात्र मीडिया संस्थान में आ रहे हैं पत्रकार बनने के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ संस्थानों को छोड़कर बाकी जगह, जैसा कि हम विचार भी करते हैं, थोड़ा संकट है। जो प्रतिष्ठित हैं वो तो प्रतिष्ठित हैं, लेकिन और जगह से जो छात्र आते हैं या जो व्यक्तित्व निकल कर आ रहे हैं, वो क्या उतने समर्थ हैं या नहीं हैं, ये मैं फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। सशक्त बनने के लिए कुछ प्रतिमानों का पालन करना पड़ता है, कुछ प्रतिमान गढ़ने पड़ते हैं, कुछ प्रतिमान स्थापित करने पड़ते हैं, और कुछ प्रतिमानों का पालन करना पड़ता है। तो कोई भी क्षेत्र हो, आप अगर प्रतिमान गढ़ना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, तो अपने मन को और एक हम जिसे कहते हैं एप्टीट्यूड, आमतौर पर रुचि कह देते हैं इंटरेस्ट, लेकिन अभिरुचि क्या है, अगर आपके अंदर अभिरुचि है उस विषय के प्रति, तो निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में सफल होंगे, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने दिया है। अभ्यास से आप उसको और निखार सकते हैं, लेकिन रुचियां तो परिवर्तनशील हैं, अभिरुचि कुदरती है आपके पास। तो अभिरुचि है या नहीं है आपके अंदर, और जो आपकी एबिलिटीज हैं, कभी कभी हम क्षमता और योग्यता को बराबर रख देते हैं, शारीरिक क्षमता और मानसिक योग्यता, दोनों को अगर हम लेके चलें, तो हमें समझना पड़ेगा कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उस फील्ड में कितनी हमें शक्ति चाहिए, शारीरिक श्रम कितना होगा और बौद्धिक श्रम कितना होगा, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, तभी हम सशक्त हो सकते हैं। पत्रकारिता जगत की चुनौतियों को हमें जानना समझना होगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है या नहीं है। अगर आपके अंदर सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है, तो निश्चित रूप से आप अपने कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और निरपेक्ष भाव से, यह भी एक प्रतिमान है कि हमें किसी के प्रति सापेक्ष नहीं होना, निरपेक्ष भाव से हमें अपना काम करेंगे, करना है तो हम निश्चित रूप से सशक्त होंगे, और हमें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना भय के, बिना लोभ के, बिना लालच के हमें सत्य का उद्घाटन करना होगा, तो हम सशक्त होंगे और उन्नति के मार्ग हमारे लिए प्रशस्त होंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में अंत्योदय की बात भी हुई है, प्रधानमंत्री जी की बात अभी चली, वो भी वहां से चले हैं, बिल्कुल गरीबी से उठकर प्रधानमंत्री के पद तक। तो जो वंचित वर्ग है या लोकहित है, उसकी चिंता भी पत्रकारों को करनी पड़ेगी। अगर वो समाज से कट जाएंगे तो उनका सशक्त होना मेरी नजर में थोड़ा कठिन होगा। और जो भी रिपोर्ट्स पत्रकार प्रेषित करते हैं वो एकांगी ना हो, यानी पक्षों का, सुबह भी बात कर रहे थे कि पक्षों, सभी पक्षों से बात करके आप अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करें और उसमें आकर्षक शीर्षक, उसका जिस तरीके से आप खबर प्रस्तुत कर रहे हैं किस तरीके से वो जनमानस को प्रभावित करती है और विश्वसनीय लगती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सूरज रोज सुबह निकलता है, रोशनी फैला देता है, पत्रकारों की कलम भी रोज सुबह सूरज के निकलने के साथ घर के बाहर अखबार के रूप में आती है और वो भी रोशनी फैलाती है बिना किसी भेदभाव के। जैसे सूरज फैलाता है, अगर ऐसे ही आप रोशनी फैलाएंगे तो निश्चित रूप से आप एक सशक्त पत्रकार बन सकते हैं। सरकार की भूमिका के बारे में मैं कहना चाहूंगा, छोटे और लघु जो समाचार पत्र रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत पिछले कुछ वर्षों में है, उनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनको समर्थन की आवश्यकता है, सरकार को उनका समर्थन करना चाहिए और जहां कभी उन्हें दूर करना चाहिए। और अंत में मैं देख रहा हूं बिल्कुल समय हो गया और शिक्षक होने के नाते दिक्कत हो जाती है ना, मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बलबीर सिंह रंग की पंक्तियां हैं, आप मेरा आशय समझ जाएंगे कि पद लोलुपता और त्याग का एकाकार नहीं होने का, पद लोलुपता और त्याग का एकाकार नहीं होने का, दो नौका पर पग रखने से सागर पार नहीं होने का, दो नौका पर पग रखने से सागर पार नहीं होने। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू भ्राताश्री। अब मैं आगे आमंत्रित करूंगी हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी, आप रुड़की से पधारे हैं, आपका स्वागत है भ्राता जी। आप डिवाइन मिरर चैनल के चीफ एडिटर है भ्राता श्री गोपाल नारसन जी, सभी तालियों से भ्राता जी का अभिवादन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी बहन, आज बड़े सार्थक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और मैं उस धरती से आया हूं जहां भागीरथ द्वारा लाई गई गंगा बहती है और उस गंगा से हम लोग अपना शरीर तो स्वच्छ कर सकते हैं लेकिन इस धारा पर जो गंगा बह रही है और हमारे भागीरथ जी भी मंच पर विराजमान है तो ये इस गंगा से हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, आत्मा को का स्नान कर सकते हैं और वही आप कर भी रहे हैं। जहां तक सशक्तता की बात है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं स्वयं में बहुत बड़ा उसका उदाहरण मानता हूं कि आज से करीब 12-13 वर्ष पहले मैं जब हिंदुस्तान अखबार को रिप्रेजेंट करता था तो मेरे अंदर एक बुराई थी और बुराई थी क्रोध की। जब भी विसंगति देखता कहीं तो मुझको क्रोध आ जाता था और उस पर नियंत्रण भी था लेकिन क्षणिक क्रोध था लेकिन बुराई तो थी। उसके बाद जब मेरी लौकिक माताजी गई तो मुझे हाइपरटेंशन, बीपी, बहुत सारी दिक्कत है, तो मैंने बहुत दवाई खाई, एलोपैथिक, अंग्रेजी, सब तरह की, लेकिन कोई फायदा नहीं। और जब मैं ब्रह्मा कुमारी जी के संपर्क में आया और मैंने राजयोग का अभ्यास किया तो भाइयों मैं आपको बताऊं कि न तो कोई बीमारी है और न कोई तनाव है और न कोई क्रोध है। ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है ये हमें इंसान तो बनाती ही है लेकिन इंसान से ऊपर भी हमें देवता बनाने की जो ये प्रशिक्षण देती है, जो ट्रेनिंग देती है। अभी जो बहन जी बता रही थी, मुरली की बात कर रही थी, तो जो ईश्वरीय वाणी है सुबह की वो हमारे लिए, जो विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स खाते हैं ना, उसका काम हमारी वो मुरली करती है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मंच पर हमारे मोहन सिंगल भाई साहब बैठे हैं जो ONGC में सेवाएं दे चुके हैं, हमारे गंगाधर भाई जी हैं ओम शांति मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से समाज को और विश्व को एक अच्छा, जो मीडिया की वास्तविक भूमिका होनी चाहिए वो आप निभा रहे हैं। तो मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस मंच पर 94 वर्ष के वाली जी विराजमान हो, वहां हम ये कहें कि मीडिया सशक्त नहीं है तो शायद वो गलत होगा। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मंजिलें मिलती हैं रास्ता भटककर ही सही, गुमशुदा तो वो कहलाते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। निकलिए तो सही, बाहर आइए तो सही। सशक्त होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? देखिए, मीडिया के अंदर आजकल क्या हुआ कि एक डायरी और पेन लिया और हम पत्रकार बन गए। हमारी एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो एक 8वीं पास या 10वीं पास से कैसे उम्मीद करोगे कि वो सशक्त मीडिया बन जाएगा, सशक्त मीडिया प्रोफेशनल बन जाएगा? तो हमें सबसे पहले वो पात्र व्यक्ति होना चाहिए। समाज के अंदर सोशल मीडिया जब से आया है तब से तो हर कोई पत्रकार बन गया है, और वो पत्रकारिता जो है वो नकारात्मकता की तरफ जा रही है। बहुत सारी सुबह हो रही थी कि वो नकारात्मकता की तरफ जा रही है, बिना प्रमाण के, बिना प्रमाणिकता खबर जा रही है। तो हम कहां सशक्त होंगे? आप अखबार के कार्यालय में जाकर देखिए, आप न्यूज चैनलों के ऑफिस में जाकर देखिए, किस तनाव में पत्रकार जी रहे हैं। खबरों की होड़, ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन विश्वसनीयता कहां है, अकाउंटेबिलिटी कहां है, उस पर हमें विचार मंथन करना होगा। सशक्तता के लिए अगर आपको उदाहरण देखना है तो पीस ऑफ माइंड देखिए, जो चैनल यहां पर ब्रह्मा कुमारी का चल रहा है, 24 घंटे का चैनल है आपका। अवेकिंग न्यूज देखिए, रन ऑफ द वर्ल्ड देखिए, ज्ञानामृत पत्रिका देखिए, बिना विज्ञापन के। और एक भी सामग्री, एक भी खबर ऐसी कोई बता दे कि वो नकारात्मक हो तो मैं मान जाऊं। और इसकी संख्या, प्रसार संख्या, लोग कहते हैं कि अच्छा बिकता नहीं है। एक भी प्रति ज्ञानामृत पत्रिका की, ओम शांति मीडिया की, शायद निशुल्क न जाती हो, लेकिन लाखों में छपती है और लोग पढ़ते हैं। कल्याण गोरखपुर से निकलती थी, बहुत डिमांड थी। शांति कुंज की मैगजीन निकलती है, बहुत डिमांड है। अच्छा परोसिए तो सही, अच्छा बनाइए तो सही, लेकिन अच्छा कब परोस पाएंगे आप? जब खुद अच्छा होंगे। और अच्छा बनने के लिए आईने में सजता समरता है हर कोई, आईने में सजता समरता है हर कोई। क्या आईने से जिंदगी जीता है हर कोई? अरे अपना आईना देखिए, अपने चेहरे की धूल साफ कीजिए, और जो विकार है आपके अंदर उन्हें दूर तो कीजिए। मैं ये कह सकता हूं कि जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका मन होगा, जैसी आपकी बुद्धि होगी, ऐसे ही आपके संस्कार होंगे। तो आप एक नकारात्मक व्यक्ति अगर मीडिया के अंदर आ जाए तो वो सशक्त कैसे हो सकता है, कैसे समाज को सशक्त कर सकता है? आज मैं ये देख रहा हूं चैनलों के ऊपर जो डिबेट होती है वो कान फोड़ू है, मर्यादाओं के विपरीत है। हम यहां चर्चा कर रहे हैं, सब एक अच्छा वातावरण है, सुगम वातावरण है, और ये दूर तक आवाज जाती है। मैं तो धन्यवाद देता हूं ब्रह्मा कुमारी संस्था को, जो एक लंबे समय से एक ऐसी फौज तैयार कर रही है जो पत्रकारिता में अध्यात्म का बोध कराती है। और पत्रकारिता में आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। हमारी नंदनी बहन ने पीएचडी किया इस विषय के ऊपर, बहुत जरूरी है। आज हम उस चीज से भटक गए हैं। हम देखते हैं कि अखबारों के अंदर अध्यात्म मिलता ही नहीं, खत्म होता जा रहा है। हम पूरी तरह से व्यावसायिक हो गए हैं, लेकिन व्यावसायिकता भी तभी जम पाएगी, तभी हो पाएगी, जब हम अपने सिद्धांतों पर, अपनी नीतियों पर, अपने आदर्शों पर और अपने मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। और उसके लिए मैं कह सकता हूं, आईना देखा तो क्या कमाल किया, खुद बनो आईना जो दुनिया। तो बात यह है कि शैक्षिक योग्यता, प्रबंधन क्षमता और मजबूत नेटवर्क अगर आपका है, और सबसे बड़ी बात है आपकी नीयत साफ हो। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सोशल मीडिया जो आज है इसके ऊपर तो कानून बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा कि जिस तरह से जो चाहे वो परोस दे।
आप देखिए ना, एक कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े नेता कोई अस्पताल में बीमार हुआ, अरे उसके प्रति संवेदना व्यक्त कीजिए कि वो ठीक हो जाए, लेकिन खबर चला देते हैं उनकी मृत्यु हो गई। अरे भाई कितना बड़ा अपराध है ये, अक्षम्य अपराध मैं मानता हूं। तो हमें सबसे पहले देखिए, हमें जो खबरें हैं खबरों की प्रमाणिकता देखनी चाहिए हमको। अगर खबरें प्रमाणिक नहीं है तो फिर आपका भरोसा आप पर से लोगों का उठ जाएगा। हमारी जो यहां पर मीडिया है, रेडियो मधुबन है, जो ज्ञानमंद पत्रिकाएं हैं, इनके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, विश्वास है। आज भी कुछ अखबार ऐसे हैं जिनके ऊपर भरोसा है। जनसत्ता पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, भरोसा है, फला अखबार में छपी है। लेकिन अगर किसी ऐसे अखबार में छप जाए कि तो उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो हमारा जो कद है, हमारा जो वजूद है, वो हमारी विश्वसनीयता के ऊपर निर्भर करता है। और हमें अपनी खुद ऐसा आत्मनियंत्रण करना होगा, हमें खुद अपने सिद्धांत बनाने होंगे, हमें खुद देश और समाज को दृष्टि में रख करके पत्रकारिता करनी होगी। अगर कोई सच भी है और वो राष्ट्र के खिलाफ जा रहा हो तो वो सच परोसना नहीं चाहिए, मेरा मानना यह है। पत्रकारिता सच की करो, लेकिन उससे पहले देश हमारा है, हमारा समाज हमारा है। और अगर हम सच के नाम पर अगर हम समाज में उसका विपरीत संदेश जाता हो, उससे हमें बचना चाहिए, तभी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य सफल होगा। बहन जी आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से जो हमारे भाई यहाँ पर आए हैं उनमें भी परिवर्तन होगा और वो एक सशक्त मीडिया पर्सन के रूप में आगे समाज का और देश का भला करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। जब से सेशन शुरू हुआ हम आध्यात्मिकता की बातें सुन रहे हैं, एम्पावरमेंट की बातें सुन रहे हैं। तो आइए चलते हैं उस अंतर जगत की यात्रा की ओर, जहां हम अपने आप को एम्पावर करें, जहां अपने आप को सशक्त करें और स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने आप को भरपूर करें। मैं इसके लिए आमंत्रित करूंगी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी को। आप सोनीपत से आए हैं, सीनियर राजयोगा टीचर है आदरणीय गीता दीदी। सभी एकदम अलर्ट होकर बैठ जाएं, एकदम अलर्ट होकर बैठ जाएं, अपने पोजीशन को एकदम अच्छा कर लें और बहुत ही शांति से, एकाग्र मन से इस अनुभव को, इस अनुभूति को अनुभव करें।
ओम शांति। मंच पर आसीन सम्माननीय देवकुल की महान आत्माएं, सभा में उपस्थित मीडिया जगत के जाने माने विद्वान, आप जो भी अपनी लेखनी से, अपने विचारों से, अपने अनुभवों से, अपनी मेहनत से हम सबको घर बैठी सारी इन्फॉर्मेशन्स दे देते हैं, कितना महान कर्तव्य है आपका। मैं तो ऐसा समझती हूँ, आप एक बच्चे के लिए वर्तमान समय एक माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं। वर्तमान समय एक बच्चा जब उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया जाता है वो रोता है, जब तक उसको मोबाइल ना दिया जाए वो खाता नहीं है, जब तक उसके मनपसंद का चैनल ना ऑन किया जाए वो दूध नहीं पिएगा। पहले माँ से दूर जाने पर बच्चा रोता था, आज उस मोबाइल को छीनने पर वो बच्चा रोता है। तो आपका कितना बड़ा रोल है, सभी मीडिया वाले, मैं ऐसा समझती हूँ, वर्तमान समय आने वाली पीढ़ी के लिए माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं। इस विद्यालय के मुख्य चार सब्जेक्ट हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, अपने जीवन में वैल्यूज को लाना और जो हम अपने जीवन में ला रहे हैं उसको समाज में, विश्व में फैलाना, उस अच्छाई को। मुझे मेडिटेशन कराने का आदेश मिला हुआ है। मेडिटेशन में सबसे पहले हम दो शब्दों को जानने की हमें आवश्यकता होती है, आई एंड माई। आई को क्या चाहिए, माई को क्या चाहिए। आई मैं अर्थात ऊर्जा, मैं अर्थात एक एनर्जी, मैं अर्थात आत्मा। क्या चाहिए, मैं को चाहिए 7 वैल्यूज। ये आत्मा के वो टूल्स हैं जो आत्मा के सशक्तिकरण को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। माई को क्या चाहिए, 5 तत्व। 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, यही हमें मिलता है, यही ये बिगड़ता है, और यही हम इसी प्रकृति को इसको सौंप देते हैं। तो समझने की बात है अपने को वो ऊर्जा समझना है, कुछ समय के लिए अपने उन 7 वैल्यूज को कैसे हम अपने जीवन में लाएं, उन गुणों का जो सोर्स है, उन गुणों का जो सागर है, उनसे हम अपने आप को कैसे जोड़ें। दांत में दर्द होता है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। शरीर के कोई भी ऑर्गन्स में खराबी होती, हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। आज अंदर का सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया है, कौन ठीक करेगा। मेडिटेशन आत्मा का परमात्मा से संपूर्ण कनेक्शन, उसको कहा जाता है मेडिटेशन। चलें थोड़ी देर के लिए उस अनंत यात्रा की ओर चलते हैं। मन और बुद्धि को सभी बातों से, सभी चिंताओं से, कार्य व्यवहार से, डिटैच करके अपने मन में खुशी लाएं। आज मुझे अपने मन की तार, अपना टेंशन भ्रकुटी के मध्य स्थित करेंगे। अपने आप को महसूस कराएं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। परम पिता परमात्मा शांति के सागर है, शांति के सागर से मेरे अंदर असीम शांति का संचार हो रहा है। मेरा मन उस शांति के प्रकंपनों से भर रहा है। जिस शांति को मैं आत्मा खोज रही थी, आज मेरा ये सौभाग्य है जो इतनी सुंदर स्थान में बैठकर उस परम शक्ति से, जो कितना भी अशांत वातावरण हो, अशांत वातावरण को भी शांति में बदल सकती है। एक शांति के गुण से हम परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, सारे विश्व को बदल सकते हैं। सिर्फ जरूरत है उस शांति के सागर से जुड़ने की। सारे दिन में थोड़ा थोड़ा अभ्यास हम अगर डेली करते हैं, तो हमारे अंदर की पर्सनालिटी सारी चेंज हो जाती है। मैं आत्मा सभी चिंताओं से मुक्त एकदम शांत हो गई हूं। मुझे अपने जीवन का जो सार है वो समझ में आ गया है। आज से मुझे अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी बनानी है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर, इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए हम सभी को शांति की उस अवस्था में रहकर कर्म करना है। परमपिता परमात्मा जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, सिर्फ अपने पिता से अपने आप को कर्म करते हुए भी जोड़ के रखना है। गीता में जिस कर्म योग का वर्णन आता है, ये वही कर्म योग है। कर्म इंद्रियों से कर्म भी करना है, लेकिन उस परम शक्ति से, शांति के सागर से अपना कनेक्शन सदा के लिए जोड़कर रखना है। शुक्रिया उस परमात्मा का जो हम सभी को एक नया जीवन देकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।
शुक्रिया दीदी आपका, शुक्रिया। सब रिचार्ज हो गए,
सभी रिचार्ज हो गए, अंतर जगत की यात्रा से वापस आ गए। वापस आइए, फिर से हम स्पिरिचुअलिटी पे चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले सबको एक बात पूछूंगी, ये जो अंतर जगत की आपने यात्रा की, आप सबको अच्छी लगी? अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी? मंत्री जी आपको अच्छी लगी? तो आप सभी भी अपने मन पर हाथ रख के एक संकल्प ले अपने मन में कि दिन की शुरुआत में हम कम से कम 5 मिनट अपने आप को परमात्मा से जोड़कर रिचार्ज करें। सभी अपने मन पे हाथ रखें, आंखें बंद करें और ये संकल्प लें कि अगर मुझे एम्पावर होना है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट अपने अंदर भरना है, तो मुझे हर रोज सुबह 5 मिनट अपने आप को परमात्मा से जोड़कर एम्पावर करना है, उनसे शक्तियां लेनी है। थैंक यू सो मच। अब हम सुनते हैं हमारे आज के इस सेशन के मुख्य अतिथि, हमारे माननीय मंत्री जी भागीरथ चौधरी जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। आप जनसंघ के समय से ही पार्टी के निष्ठावान सदस्य रहे, भाजपा कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद और 2 बार विधायक के रूप में भाजपा की रीति नीति और संगठन कार्यों में सक्रिय रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का आपने कार्य किया है। आप 2003 से 2008 तक विधायक के रूप में अजमेर में कार्यरत थे, साथ साथ 2013 से लेकर 2018 तक भी आप विधायक के रूप में कार्यरत थे। सांसद आप लोकसभा क्षेत्र के थे 2024 में और वर्तमान समय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार के रूप में आप कार्यरत हैं। जिस तरह से आपका नाम है भागीरथ, वाकई परमात्मा ने आपको इस संसार में भाग्यशाली रथ बनाकर जनसेवा के लिए उपस्थित किया। मैं भाई साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं अजमेर से ही हूँ, हम कई प्रोग्राम्स में मिले हैं, लेकिन भाई साहब बहुत नम्रचित्त आत्मा है, शायद इसीलिए उनका नाम उनके माता पिता ने भागीरथ रखा है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए भाई मंत्री जी से निवेदन करूंगी आप अपने मन के भाव हमारे समक्ष रखें।
ओम शांति। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 5 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश भर से आए पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से संबंधित यहां इस कार्यक्रम में पधारे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मोहन भाई जी, डॉक्टर सविता दीदी तथा अन्य वक्तागण। आज का विषय मीडिया पेशेवरों को क्या सशक्त बना सकता है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है वैश्विक शांति और सद्भाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की क्या भूमिका है। अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई है, शांति ओम शांति। मानव जगत का एक ही उद्देश्य है कि मुझे शांति कैसे मिले। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कहते हैं मानव जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। मानव जीवन में इतना उसको अधिकार है, वो मोक्ष प्राप्ति का फल और उस मोक्ष प्राप्ति उसको हो सकती है, परंतु वो मानव रहे। क्योंकि मीडिया पेशेवरों की को क्या सशक्त कैसे बनाए, विषय तो यह है, परंतु इंसान सशक्त कैसे बने, इंसान में इंसानियत कैसे बनी रहे, मानवता कैसे बना रहे, ये सबसे पहले जरूरी है। हर व्यक्ति अधिकार की बात करता है, परंतु उसका कर्तव्य बोध क्या है, उसका कर्तव्य क्या है? यदि कर्तव्य का बोध हो जाए तो पत्रकारिता हो चाहे कोई क्षेत्र हो, कोई भी दायित्व मिलता है, वो व्यक्ति जरूर उसमें अपना स्थान बनाता है। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मीडिया की बहुत अग्रणी भूमिका है, रही है, आगे भी रहेगी। अभी पूर्वोक्ताओं ने बताया मीडिया क्योंकि देखिए मैंने कहा कोई दायित्व हो चाहिए, चौथे स्तंभ में आपकी मीडिया का दायित्व आपके पास है, पूरे देश भर के मीडिया है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, आपने ये 5 दिवसीय ये जो मीडिया देश भर के सम्मेलन किया है, ये देश हित में, इस राष्ट्र हित में, और ये विश्व बंधुत्व के भावना को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम आपने ये आयोजन किया है। तो मीडिया की इस देश को बहुत जरूरत है। शोषित पीड़ित जो वर्षों से अपेक्षित रहे हैं उनकी आवाज मीडिया है। सक्षम व्यक्ति कोई न कोई माध्यम निकाल लेता है, परंतु शोषित पीड़ित और वंचित समाज में जो व्यक्ति है अंतिम पायदान पे बैठा है। अंत्योदय योजना की बात चली थी, आज भी इस देश में बहुत आवश्यकता है और उसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, जिस जमात से मैं आता हूं, देश की आजादी के बाद हमारे राजनीतिक क्षेत्र में एक छोटा सा जनप्रतिनिधि गांव का सरपंच होता था, जनता उसको सिर आंखों पर उठा के रखती थी, बहुत मान सम्मान होता था, जनता करती भी थी और वो उसके लाइक भी थे। धीरे धीरे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में विकृति आ गई, आज जनता के मन मस्तिष्क में ये बैठ गया नेता है, इसका मतलब क्या है? जनता की समझ में स्पष्ट, चाहे कितना ही कोई ठीक होगा परंतु स्वीकारना होगा उसको। ऐसे समय में मीडिया भी जो जिसके लिए जाना और पहचाना जाता है, जो चौथा स्तंभ है, उस देश को और दुनिया को बहुत जरूरत है आपकी। क्या कहीं हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो सोच जनता का बना है कहीं मीडिया का नहीं बन जाए? इसके लिए भी चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है जहां ऐसी संस्था, पवित्र संस्था, जहां शांति का एक पैगाम लेकर देश और दुनिया में यह संस्था काम कर रही है। मैंने शुरुआत में कहा इंसान का एक ही है कि मुझे शांति कैसे मिले, उसी के लिए मानव सोच रहा है परंतु कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यह देखा है इस दुनिया में सबसे बड़ी संगत है सोसाइटी, वही इंसान को बनाती है और वही रास्ता तल में पहुंचा देती है। संगत सोसाइटी और यहां इस संस्था से जुड़कर, अभी भाई साहब बता रहे थे मुझे गुस्सा आता था, परंतु जब से मैंने सोचा और गुस्सा भी सच्चाई पे आता था, ये मानव स्वभाव है, परंतु आखिर गुस्सा कोई समझदारी का परिचायक नहीं है। ये गुस्से को शांत करने के लिए, संयमता लाने के लिए, पवित्रता जीवन में लाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठता बनाने के लिए ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है ये महान है। मैं भी कई वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं। दादी मां अभी मैं पुष्पांजलि करके आया था, मुझे बार बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और उन्होंने उनसे मिलकर ऐसी ऊर्जा आती थी, शक्ति आती थी, मन करता था उठ के दी जाए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ये जो बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है मेडिटेशन। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि मैंने कहा संगत बहुत बड़ी चीज है, उसके अलावा संवाद। आज सारे देश भर के मीडिया यहां आए हैं, संवाद हो रहा है। जब संवाद हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है, चाहे देश में हो चाहे दुनिया में हो, संवाद ऐसी चीज है जो हर समस्या का समाधान निकालता है। और मुझे खुशी है कि आज देश भर के मीडिया यहां आए हैं, ये संवाद के माध्यम से इस देश और दुनिया में जो एक भयावह वातावरण खड़ा हो रहा है, जो शांति को दूर भगा रहा है, मैं चाहूंगा ये संवाद के माध्यम से और अच्छी सोच के माध्यम से यहां अपने दायित्व तो क्या है उसको समझकर ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया है ये देश हित में होगा, मानव हित में होगा, और जो हमारी संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम हमारा कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं, उस भावना के आधार पर मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ये प्रकृति परमात्मा है। क्योंकि मुझे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिन्होंने घर परिवार समाज सबको छोड़कर राष्ट्र के लिए वो समर्पित हो रखे हैं, और उन्होंने जो गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, आज उससे हमारा देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। फिर भी कई शक्तियां हैं जो हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। इस जो देश भर के मीडिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कठिन जो विदेशी शक्तियां हमारे देश को मैं अशांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबका दायित्व तो बनेगा, और मुझे विश्वास है कि इस देश में शांति बनाए रखने के लिए, इस देश को अखंड और मजबूत बनाए रखने के लिए आप मीडिया के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीब को गणेश मानकर काम किया, चाहे शौचालय की बात हो, कोई जाति धर्म पार्टी नहीं देखी, उन्होंने कहा मैं छोटा व्यक्ति हूं इसलिए छोटी बात करता हूं, करोड़ों मेरी माताएं बहने अंधेरे का इंतजार करती है, उन्होंने वो करके दिखाया, उसमें कभी जाति पार्टी धर्म नहीं देखा। उन्होंने जब करोड़ों माताएं बहनों के धुआं से निजात दिलाने का काम किया, उनके आंसू पहुंचने का काम किया, उसमें कोई जाति पार्टी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, अनेक काम किए हैं। परंतु आज पूरे देश भर के मीडिया हैं, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया है, तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत बढ़िया मंच मुझे मिला है, तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी ये धरती, इसको भी हमारे देश का अन्नदाता बड़ा महान है, बहुत महान है। हमारा इस हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान बहुत बड़ा महान है। देखिए, किसान के काम करने की कोई आयु सीमा नहीं है, बूढ़े से लेकर महिला और बच्चे काम करते हैं, नहीं तो आयु सीमा है और नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। परंतु एक विकृति आ गई है, क्योंकि ये सारा मीडिया बैठा है, हमारी इस धरती को नशीली बना दिया है। यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड डालकर हमारी इस धरती को भी नशीले कर दिया है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब वो चाहते हैं इस धरती को बचाएं। धरती बचेगी तो मानव नहीं, पशु पक्षी नहीं, प्राणी मात्र भी प्रभावित हो बिगर नहीं रह सकता है। इसलिए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती की ओर हमें बढ़ाना है। दूसरा, पहले डॉक्टर्स नाड़ी भेद हुआ करते थे, नाड़ी देखकर इंसान को दवा देते थे, आजकल डॉक्टर से ये लिखते हैं आप जांच कराइए, रिपोर्ट आने के बाद ही वो दवा लिखते हैं। ऐसे ही इस मीडिया के माध्यम से सभी अन्नदाता किसानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो सोयल हेल्थ कार्ड के तहत मिट्टी का परीक्षण कराए और उसके बाद उस मिट्टी में क्या कमी है, जिप्सम की कमी है, पोटाश की कमी है, क्या कमी है वो डाले, ताकि ये धरती भी बचेगी, किसान के लागत मूल्य भी कम होगा, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, मानव भी बचेगा। क्यों, पंजाब से हमारी अपने बीकानेर ट्रेन आती है, उसका नाम भी कैंसर ट्रेन पड़ गया है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस धरती को भी बचाना है तो अन्नदाता आपके मीडिया के माध्यम से अन्नदाताओं को भी आप जरूर ये बताने की कोशिश करें, ये जन जागरण अभियान चलाना है। और मीडिया की जो करता है ये मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, 9 बजे की, मैं 30 साल हो गए मैं 9 बजे बाद भोजन नहीं लेता हूँ, 30 साल हो गई, मैंने कभी जीवन में चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का कभी सेवन नहीं किया है। मैं तेल और 12 मार्च 2010 के बाद तेल और साबुन का मैंने त्याग कर दिया है और मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया की बहुत बड़ी समस्या है, मीडिया में आप मीडिया की बहुत बड़ी कठिनाई है, क्यों हमें पता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप मीडिया की जो जो भी कठिनाई है कोई है वाजिब आप हमें बताइए, हम उनको संज्ञान में लाएंगे और मीडिया को क्या तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। परंतु भाई और बहनों, मेरा निवेदन है, आप में विकृति आ गई तो देश को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। जो वंचित हो, शोषित हो, जो पीड़ित, जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, वो आपसे बहुत उम्मीद लेके बैठा है, उनका सहारा आप हो। मीडिया में शुद्धता, पवित्रता और प्रमाणिकता बहुत जरूरी है और आपकी कठिनाई जो भी है हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। परंतु आप में कोई विकृति नहीं आ जाए, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्हें खाऊंगा नहीं, खा नहीं दूंगा, और अपने स्तर पर जितना हो सके मोदी जी कर रहे हैं, हमें भी सबको करना है, हम सबको श्रेष्ठ बनना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आदरणीय सविता दीदी जी से निवेदन करूंगी कि मंत्री जी का शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करें, एवं आदरणीय मोहन सिंगल भाई साहब से निवेदन करूंगी कि ब्रह्मा कुमारी की एम ऑब्जेक्ट जो है लक्ष्मी नारायण का फ्रेम देकर उन्हें सम्मानित करेंगे, साथ साथ ईश्वरीय प्रसाद देकर उन्हें सम्मानित करें। हम सभी तालियों से उनका सम्मान करेंगे। अभी मंत्री जी हम सबके बीच में विदाई लेंगे, इसलिए हम उनका फिर से पुनः अभिवादन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन आदरणीय मोहन सिंगल भ्राता जी, आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग तथा आर्किटेक्ट विंग के चेयरपर्सन है, आपसे मैं निवेदन करूंगी आज के विषय पर हम सबके बीच में प्रकाश डाले।
ओम शांति। काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं और आज के इस मीडिया कॉन्फ्रेंस इसके विभिन्न वक्ताओं को सुन रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को भी अभी आपने सुना और कितना सारगर्भित भाषण उन्होंने किया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यह जो कॉन्फ्रेंस है मुख्यतः पीस एंड हार्मनी के ऊपर जो रखी गई है, इसका जो मुख्य विषय है, तो आप जिस हॉल में बैठे हैं इसका नाम ही हमने हार्मनी हॉल रखा है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस बात पर विश्वास करता है कि हम बाहर की हार्मनी की बात तो करते हैं, अलग अलग संप्रदाय, धर्म, भाषा और विभिन्न देशों के बीच में हार्मनी हो, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानता है कि सबसे पहली हार्मनी की आवश्यकता है व्यक्ति के अंदर की हार्मनी। अंदर की हार्मनी मानी मीन्स हार्मनी बिटवीन हेड, हार्ट एंड हैंड, दिमाग, दिल और हाथों के बीच की हार्मनी। ये अगर हार्मनी होगी तो बाहर की हार्मनी भी बहुत सहज रीति से संबंध स्थापित हो सकती है। तो पहला तो मीडिया वालों को मेरा ये निवेदन रहेगा कि अंदर की हार्मनी प्राप्त करके वो यहाँ जाएं, और जो आप शिविर कर रहे हैं उससे तो आपको इसका आइडिया हो ही गया होगा, लेकिन अपने अपने स्थानों पर जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर भी इस संस्था के कांटेक्ट में रहेंगे तो इंटरनल हार्मनी आपकी ये अनुभव भी होगी और जीवन में उसका प्रतिक्षण लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ जो आज इस सत्र का विशेष जो विषय है, मीडिया वालों को क्या चीज सशक्त बना सकती है। वास्तव में आज विभिन्न प्रकार के शक्तिकरण हैं, फाइनेंशियल्स एम्पावरमेंट, फिजिकल एम्पावरमेंट, मेंटल एम्पावरमेंट, इमोशनल एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, वो इन सब का आधार है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। इसीलिए बाहर के एम्पावरमेंट की बात तो मीडिया वाले करते ही रहे हैं और अपने समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय प्रति समय लोगों को इसका आइडिया होता रहता है, लेकिन इन सब का जो सार है वो है आध्यात्मिक सशक्तिकरण, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। जब हमारे अंदर अगर इंटरनल जागृति, जागृति की बात बहन जी बता रहे थे, तो इंटरनल अवेकनिंग हो गई, आंतरिक जागृति अगर हो जाती है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आंतरिक सशक्तिकरण, तो बाहर के ये जितने भी सशक्तिकरण है, चाहे मानसिक है, शारीरिक है, धन का सशक्तिकरण है, आज मुख्य संबंधों का सशक्तिकरण, वो बहुत आवश्यक है, और इसके साथ साथ समय का भी सशक्तिकरण। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको मूल बात के ऊपर जो बताया जा गया है उसको आप थोड़ा सा एम्पावर करेंगे अपने अपने स्थानों पर जाने के बाद भी, तो ये सशक्तिकरण आप व्यवहारिक जीवन में उतार सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। इसीलिए इसके लिए क्या करें, हम मुख्य एक आवश्यकता मैं समझता हूँ कि दूरदर्शन एक मुख्य जो मीडिया का साधन है हम जानते हैं, दूरदर्शन को हम दिव्य दर्शन बनाते चलें, आकाशवाणी को अमृतवाणी बनाते चलें और समाचार पत्रों को आचार पत्र बनाते चलें। तो जितना जितना ये सब होता रहेगा उनके साथ साथ जीवन के अंदर सब प्रकार की आपको व्यक्तिगत शांति की भी अनुभूति होगी, सोशल शांति की भी, और फिर पूरे समाज के अंदर शांति स्थापन होगी। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी भी भागीरथ चौधरी जी थे, तो वास्तव में हमारे लिए आपके लिए एक विशेष ये सूचना की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिनको आप देख रहे हैं, यह वास्तव में इन्होंने भी भागीरथ का एक बहुत बहुत बड़ा कार्य करा। भाग्यशाली रथ जिस तन का आधार लेके परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुए, मुझे इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला कुछ 7-8 वर्ष, और मैंने देखा कि ये किस प्रकार से कितनी महान आत्मा भागीरथ आत्मा थी कि इन्होंने अपने जीवन से एक अकेला व्यक्ति शुरू करा 1936 में इस संस्था के लिए खुद अपना जीवन से, और आज ये विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेडीज लेस लेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई केवल एक भागीरथ के माध्यम से। और आज जो भागीरथ हमारे साथ थे, भागीरथ चौधरी जी जो हमारे चीफ गेस्ट, उन्होंने भी इस बात पर प्रकाश डाला कि उनका भी संबंध इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफी रहा है। और आप सब लोग जो मीडिया वाले आए हैं, मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं मुझे विश्वास है कि आप सब भी यहाँ से सच्चे सच्चे भागीरथ बन करके जाएंगे और इस हारमोनी हॉल से इंटरनल हारमोनी की बात अपने अंदर धारण करेंगे और एक नए संसार के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। एक बार मैं पुनः मंच पर विराजित जितने हमारे विद्वान वक्तागण हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ आप सब लोग जो आए हैं भारत के विभिन्न स्थानों से मीडिया से संबंधित, उन सबका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए और एक हम सबको भी लाभान्वित किया, और आप भी काफी हद तक इससे लाभान्वित हुए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी आपका। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि सभी मेहमानों को, अतिथियों को ईश्वरीय सौगात शाल देकर और ईश्वरीय प्रसाद देकर सम्मानित करेंगे।